और तुर्की की जो गवर्नमेंट है वो किया था। इन्होंने कहा था जी कि ये बहुत अरसे से जो है ये दोनों पार्टीज इंसर्जेंसीज जो हैं ये मुल्क के अंदर कर रही हैं, और सबसे पहले 8 जून को इन्होंने 4 लोगों को डिटेन किया था और आज इन्होंने फिर और लोगों को भी पकड़ा है।
टाइम हुआ है हमारे कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम और रेडियो आईडी की, तो हम स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
एना सोना कर लिया हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इस तो अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
स्प्रिंग में गार्डनिंग सीजन अब शुरू हो चुका है कैरेटन सब्जी फार्म पर।
हर तरह के फल फूल और सब्जियों की पनीरी, चाहे लेने हो करेले,
भिंडी,
चप्पड़ कद्दू,
टिंडा,
हलवा कद्दू,
रामतोरी,
पालक,
सरसों का साग,
धनिया,
लहसुन के बीज,
प्याज की पनीरी,
प्याज के बीज और हर तरह के गार्डनिंग टूल्स,
पतली,
रम्बा,
कई,
मिट्टी, खाद और पॉटिंग मिक्स।
एट कैरेटन सब्जी फार्म 9058409000
050 Airport Road, Caledon, Airport Road and Mayfield के corner पर।
अब mortgage लेना और भी आसान। Centrum Future Mortgage Group के Kaukab Javed को call करें। Private mortgage for any purposes, commercial mortgage, industrial mortgage, farm and hobby farm. Very comparable rates for first, second and third mortgage. Newcomers to Canada, first time buyers, self-employed, refinancing, debt consolidation. Assist in real estate. He will make mortgage easy for you. Kaukab Javed, mortgage agent, 416-454-6065.
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन। एंड साहब, एक कॉन्डो आया है, एंड कॉन्डो भी क्या लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये आपका अपनी जगह से ही सेलिब्रेशन स्क्वायर के राइट ऑपोजिट सेलिब्रेशन स्क्वायर, ब्यूटीफुल वन बेडरूम प्लस डेन, फोर पीस एनसुइट प्लस सेकंड बाथरूम, तो दो बाथरूम है इनके पास, वन प्लस डेन है, और 9 फुट की सीलिंग है इनकी, और अपग्रेड ग्रेनाइट ब्रेकफास्ट बार है, वॉक टू स्क्वायर वन, ट्रांजिट टर्मिनल है, फ्री शटल टू गो ट्रांजिट, एंड इसके साथ साथ एक्सेलेंट फैसिलिटीज इंक्लूडेड, इंडोर पूल, व्हर्लपूल, मूवी रूम, सौना, स्टीम रूम, इसके साथ साथ गेस्ट सुइट, पार्टी रूम, रिक्रिएशन रूम, रूमी रूम है जी, आप क्या याद करेंगे। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, फ्रिज, स्टोव, बिल्ट इन माइक्रोवेव, वॉशर, ड्रायर, डिश वॉशर एंड ऑल विंडोज कवरिंग। ये लिस्ट किया गया है 669,999 का। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर लें आरफा मुजफ्फर जी को 647-898-6245, 647-898-6245 इनका फोन नंबर है। आज 7 बजे आपका पसंदीदा प्रोग्राम भूली बिसरी यादें आप देख सकेंगे, 7 बजे रेडियो पे भी और टीवी पे भी, सब जगह ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट किया जाएगा। ये जनाब लियाकत मलिक साहब इसको पेश करते हैं आपके लिए। आज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है मुजीब आलम साहब को, मुजीब आलम को ट्रिब्यूट देंगे भूली बिसरी यादें एग्जैक्टली एट 7 o'clock। जी
हाँ जी, मजीद भाई, आज अब जो मुश्किलात हैं यूरोपियन यूनियन की बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हौली हौली जैसे होते ना स्लो पॉइजन, वो रशिया इनको स्लो पॉइजन दे रहा है पूरी तरह एकदम से, गिचिनिन की मरोड़ना ना एकदम से रोक के गैस और ऑयल और गैस को हौली हौली, पहले 10% फिर 20% ऐसे ऐसे ले रहा, तो अब इनकी हौले हौले इनकी भी जान जा रही है। आज जो जर्मन वाइस चांसलर है रॉबर्ट हेबक, उन्होंने आज अपने जो है, अच्छा कल हमने अपने उसका बड़ा मजाक उड़ाया ना, उसका जो हमारा था मिनिस्टर एहसन इकबाल के, जी चाय कम पियो वो कह रहा था। अच्छा आज इन्होंने कहा एनर्जी कम यूज करो, इन्होंने जर्मनी में, जर्मनी जर्मन जो वाइस चांसलर हैं रॉबर्ट हेबक, उन्होंने कहा जी कि एनर्जी कम यूज करो क्योंकि रशिया जो है हौले हौले अपनी नेचुरल गैस जो है वो कट करता जा रहा है, क्योंकि वो जो उनकी जो पाइपलाइन थी ना बिछी हुई नॉर्ड स्ट्रीम 1, वहां से 40% तक इनको वो आती थी, तो वो कह रहे हैं कि जी अब ये कट करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये हमारे जो है वो जहर हौले हौले अपने नलके बंद करता जा रहा है ना। और अच्छा इसको इन्होंने जरा अंडर प्ले करने की कोशिश की है जर्मन गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो जो सीमेंस एनर्जी जिस जो कि इसके साथ इन टच है और जो हमारे लिए फैसिलिटेट करती है जर्मनी के अंदर गैस, उसकी कुछ जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये कोई मेंटेनेंस और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आप झूठ ना बोले। लेकिन बहरहाल असल में तो फैक्ट है कि पुतिन साहब जो हैं गैस के वॉल्यूम्स को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, और आपको पता ही हमने बड़ी दफा आपको बता दिया है कि जर्मनी जो है यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी है, नॉट सेकंड फर्स्ट, बिगेस्ट इकोनॉमी है, और ये तकरीबन 35% गैस इसको चाहिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो कि ये रशिया से लेता होता था। इसी की वजह से जो है अब चूंकि सप्लाई कम होती जा रही है तो ये ऑयल प्राइसेस जो हैं ये भी ज्यादा होती जा रही हैं, और 13% तक जो है वो कहते हैं जी ये ऊपर गई हैं टू 139.10 यूरोस पर किलोवाट पर आवर, विच इज 40% मोर देन लास्ट मंडे। अब जो है ये प्राइस ऊपर चलेगी और यूरोप के दूसरे इलाकों में भी जो है वो, लेकिन आज इन्होंने जर्मन जो वाइस चांसलर हैं रॉबर्ट हेबक साहब, उन्होंने कहा जी हमारे पास बहुत ज्यादा गैस है और हम दूसरे जगहों से लेकर आ रहे हैं और आपको इतनी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी कौम की भी बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं जर्मन का कि मैंने एक ही कॉल दी थी उनको और उन्होंने जो है ऑलरेडी अपनी जो है कंजर्वेशन शुरू कर दी है, कम गैस यूज कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम तो अब है। WHO ने जनाब आज एक अनाउंसमेंट की है और उसके मुताबिक नेक्स्ट थर्सडे को, आज थर्सडे है और नेक्स्ट थर्सडे को वो कह रहे हैं जी हम एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं मंकी पॉक्स के ऊपर। अच्छा ये बहुत खतरे की घंटी है, उसकी वजह ये है कि इमरजेंसी मीटिंग जब WHO बुलाता है तो वो सिर्फ उस लिए बताता है जब कोई पेंडेमिक फैल रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये 1600 तो कन्फर्म्ड केसेज हैं, 1500 सस्पेक्टेड केसेज हैं, 72 डेथ्स हो चुकी हैं, 39 कंट्रीज में ये फैल गया है, तो उसके लिए हमको स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी। और ये इसका पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं और जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट से जैसे कि नजला फैलता है वैसे ये फैल रहा है, तो वो इसलिए जो है आप करेंगे तो अब उसमें बताएंगे नए कुछ जो है क्या हमने उसके ऊपर बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बारे में बात करेंगे। AFP की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक तकरीबन 10,000 लोग जो थे आज ढाका में निकले हुए थे, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वहां पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए जो गुस्ताखाना बातें की थी बीजेपी के दो मेंबर्स ने, उनके ऊपर ये जो है ये निकाल रहे थे मोर्चा, इन्होंने निकाला हुआ था और इन्होंने कहा है अपनी गवर्नमेंट को कि ये बिल्कुल सारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात आप खत्म करो। इसके अलावा ये लोग जो थे वॉक करके इंडियन एम्बेसी के पास जाना चाहते थे लेकिन इनको ब्लॉक कर दिया गया कि ये आगे ना जाएं, लेकिन ये बिल्कुल पीसफुल जो थे प्रोटेस्टर्स थे, इसको ऑर्गेनाइज किया था इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है बांग्लादेश में, और आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो है फोर्थ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहां पे काफी जब आवाज बुलंद होती है तो इसकी काफी आवाज जोर से सुनाई देती है दुनिया में। 150,000 जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उन्होंने कहा कि अब हम फ्राइडे के दिन जो है मेजर सिटीज में ये करेंगे, यूनिवर्सिटीज में करेंगे और कॉलेजेस में और छोटे टाउन्स के अंदर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज के लिए। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बहुत है, लेकिन वही जो हमने आपको सुनाया था कि इनके जो एक मिनिस्टर है उन्होंने कहा था जी कि हम इस सारी चीज को इनको जो है वो मतलब ऐसा नहीं करने देंगे कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएं, तो अब देखेंगे क्या होता है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन तो काफी बड़े जो है वो शुरू हो गए। एक नई स्टडी आई है जी अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर ये छापी गई है और इसके अंदर उन्होंने लिंक जो है बनाने की कोशिश की है कि आपको डायमेंशिया जब होता है तो उसमें मेन बात क्या होती है। उन्होंने आज ये अपनी रिसर्च में लिखा है कि जब आपको डायमेंशिया होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास विटामिन डी की कमी है, तो वो कहते हैं जी विटामिन डी वैसे भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपकी हेल्थ के लिए, आपके सिस्टम में जो है ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है और आपकी हड्डियों को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो वैसे भी विटामिन डी आपकी स्किन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं जी कि ये हमें अब पता चला है, हमने कोई 30,000 पार्टिसिपेंट्स जो यूके में थे जिन्होंने के स्टडी में हिस्सा लिया था उनको हमने किया था और हमें पता चला था कि उनकी जिनको अल्जाइमर था उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम था। तो ये कनाडा के लिए भी आज बड़ा कंसर्न आया है क्योंकि कनाडा के अंदर एक ऐसी सिमिलर रिपोर्ट 2010 में आई थी और उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 72-97% लोगों में जो है डेफिशिएंसी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ये आज इसको काफी मेजर जो है स्टडी समझी जा रही है। रेवलॉन जी, रेवलॉन मेरे ख्याल में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के किसी एक स्टेज पे रेवलॉन ना यूज किया जाए। व्हेन वी वर टीनएजर्स तो हम तो बहुत रेवलॉन पे यूज करते थे, बट रेवलॉन नाउ अनफॉर्चुनेटली जिसने बहुत बड़े बड़े सुपर मॉडल्स जैसे कि क्लॉडिया शेफर, सिंडी क्रॉफर्ड, क्रिस्टिया टर्लिंगटन जैसी जो है वो सुपर मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कराया था, नाउ इट इज एन ह्यूज मल्टीनेशनल जो कि आपको पता ही है कि एलिजाबेथ ऑर्डन और एलमे और ये बहुत सारे मेकअप्स बनाती है। तो ये अब चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए इसने जो है वो अब किया है, अप्लाई किया है एंड इट इज एन 90-year-old कंपनी माजिद भाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका यह हाल इसलिए हुआ है कि बिकॉज इट कुड नॉट कीप पेस विद द चेंजिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। तो यानी यंगस्टर्स को शायद इसने नहीं किया या इस तरह करके, हमेशा लोगों को लगता था कि शायद जो मिडिल एज या कि ऊपर की जो एज की लड़की लेडीज हैं उनके लिए ये हेयर रेवलॉन था बड़ा क्लासिक, स्पेशली जो इनकी रेड लिपस्टिक होती थी ना माजिद भाई, दैट वाज अ रेड नेल पेंट जो होती थी दैट वाज अ हिट विद एवरीबडी। लेकिन अब इन्होंने जी बैंकरप्सी के लिए चैप्टर 11 बैंकरप्सी विच मीन्स कि हालत इनकी काफी खराब है उसके लिए इन्होंने अब अप्लाई किया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है जी उसने आज एक बहुत बड़ा तमाका छोड़ा है और वैसे ये कह रहे थे थोड़े दिनों से लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने कहा जी कंप्लीटली ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर इससे हम अपनी हाथ और शाबाशी उठा रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये हालांकि 27 years ये जो है इनके पीछे खड़े रहे है जी। अब वो कह रहे हैं हम इनके पीछे नहीं खड़े हो रहे, इसकी वजह ये है और वो कह रहे हैं जी कि बहुत सारी जो विंडोज 10 की अब जो वर्जन होंगी उसमें ये अवेलेबल नहीं होंगे, उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो हमने फ्लोट किया हुआ है उसको ये प्रमोट करना चाहते हैं। वो कहते हैं वो वैसे भी एक्सप्लोरर से बेटर है, फैस्टर है, सिक्योर है ज्यादा और मॉडर्न ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपको देता है, तो इसलिए वो लोग जो एक्सप्लोरर यूज करते थे अब नहीं कर सकेंगी। तो ये है चक्कर। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज आई है और ये बहुत ही बैड न्यूज है टेस्ला के लिए क्योंकि इन्होंने एक स्टडी की है ऑन 830,000 व्हीकल्स और उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि भाई क्रैश कौन सी ज्यादा मॉडल की जो मेक की गाड़ी है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उनको पता चला है यानी वो गाड़ियां जो ऑटोमेटेड है
yes.
जो मतलब है ड्राइवर बैठा भी अगर होए तो भी वो गाड़ी खुद ही चल रही होती है अगर आपने उसके अंदर जो है वो डाला हुआ है जीपीएस में आप उसका एड्रेस डाला हुआ है। तो वो कहते हैं जी कि ऐसी तमाम ऑटोमेटेड जो गाड़ियां बन रही हैं दूसरे ब्रांड्स की उसमें टेस्ला के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने तकरीबन 70% ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑटोमेकर से ज्यादा इन्होंने शो किए हैं एक्सीडेंट्स इनकी ऑटोमेटेड जो कार्स हैं उसके अंदर। तो वो
दे वर 5 किल्ड टू, नॉट टू फॉरगेट अबाउट दैट
एग्जैक्टली। इससे पहले जो प्यू रिसर्च सेंटर था इनका अमेरिका का उसने भी कहा था कि 63% जो यूएस में जो लोग हैं वो अब नहीं चलाना चाहते हैं ये ड्राइवरलेस गाड़ियां, सिर्फ 37% चलाना चाहते हैं। तो इसलिए आज इन्होंने ये जो है नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की उसने कहा है कि अगर आप ये ऑटोमेटेड कार चला भी रहे हैं तो भी यानी कि ड्राइवर के बगैर वाली जिसको ड्राइवरलेस कार भी कहते हैं फिर भी अगर आप उसमें बैठे हैं तो आप पूरा कंट्रोल उसको गाड़ी को मत दे दो, आप फिर भी आप मॉनिटर करो, फिर भी आप कहीं पे कंट्रोल आपको लेना है तो आप ले लो पूरा गाड़ी के ऊपर जो है आप, क्योंकि मशीन है ना,
मशीन
किसी वक्त भी कुछ भी खराब हो सकती है तो आप कंट्रोल पूरा मत छोड़ो एंड यू हैव टू बी विजिलेंट। कुछ लोग क्या करते हैं वो लगा के ना सो जाते हैं गाड़ी में कि अब तो ये मैंने जीपीएस का इसका एड्रेस डाल दिया अब ये खुद ही पहुंचे, तो वो कहते हैं ऐसा ना करें, ना सोएं, विजिलेंट रहें आप जब व्हेन यू आर इन द कार। एंड जनाब आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी लाए हैं, वाशिंगटन पोस्ट की ये स्टोरी है एंड दिस इज अ ह्यूज न्यूज और ये आपको ये बताएगी कि जिस वक्त आपने किसी को खराब करना होता है तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे ये जो है अंदर घुस जाते हैं लोग और वो करते हैं। अगर आपको ईरान के अंदर रेवोल्यूशन जब आई थी अगर वो पता हो तो कैसे जो है अलेजली वैसे तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे यंगस्टर्स जो थे ईरान के उनको जो है उकसाया, आप कैसे ये चीज लेकर आए। तो ये जो बेचारे हमारे इमरान खान कहते हैं कि ये साजिश भी हुई है और मुदाखलत भी हुई है, तो ये तो इन्होंने अपने मुल्क में की हुई है शुरू है जी। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है और इसका नाम है अ डीसी टैक्सी ड्राइवर हु बिकेम अ निक्सन मोल ड्यूरिंग वाटर गेट स्कैंडल। तो जनाब ये है स्टोरी इसकी। अच्छा स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जी एक टैक्सी ड्राइवर था एल्मर वेट, ये जिस जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो उसकी शक्ल देख सकते हैं। ये एल्मर वेट जो था ये 1970s में वॉशिंगटन के अंदर टैक्सी चलाता था और बहुत तीन डेकेड से ये चला रहा था। और फिर इसने सोचा कि जी मुझे जो है ये जो बड़े बड़े लोग मेरी गाड़ियों में बैठ के, ये जो बहुत सारे गैम्बलर्स और पॉलिटिशियंस तो और सिंगर्स तो ये लोग हैं, तो कभी मुझे इनकी हेल्प लेनी चाहिए। ये सारा अकाउंट जो वॉशिंगटन पोस्ट में आया है, ये जो छापा है, ये बहुत सारी जो स्टोरीज ये इसकी जो बेटी वेरोनिका वेरोना स्कॉट ने बताई थी कभी प्रेस को, उसको जमा करके इन्होंने आज ये स्टोरी लिखी है। वो कहते हैं जी इस कैबी का हालांकि था तो ये टैक्सी ड्राइवर, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इसका लाइफस्टाइल था। तो ये कुछ बहुत सारे कांग्रेस ने मैनुस्क्रिप्ट थे जो इसकी बेटी के पास जो पड़े हुए थे, जो इसकी जब वो मर गई और चीजें जो थी, एक बॉक्स था उसके पास, वो उन्होंने रिकवर किया और उसकी बेस पे इनको पता चला कि ये हुआ क्या है। अच्छा ये वाटरगेट स्कैंडल के अंदर ये जो एल्मर वेट है ना जी, ये इसको हायर किया एक बड़ा इसका ओल्ड फ्रेंड था जॉन बकली। और वो कैसे बना कि एक वहां पे कुछ वाकया हुआ और वो ये FBI में था उस वक्त, तो उसके लिए इसको एल्मर वेट को बुलाया गया और उसको कहा कि भाई तुम हमें बताओ क्या हुआ। तो उसने आके वहां पे विटनेस दी थी, तो उसकी वजह से जॉन बकली का केस जो था FBI में वो बड़ा स्ट्रांग हो गया था और उसको बड़ी शाबाशी मिली थी। जब उसने FBI छोड़ा तो ये जो है उसका दोस्त बन गया, लेकिन उसको पता चल गया था ना क्योंकि FBI के ऑफिस में वो विटनेस बन के गया था, तो उसको पता चल गया कि ये बहुत बड़ा आदमी है। तो इसने उसको कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं जरा अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं भी जरा जैसे ये बड़े बड़े लोगों को जिनको मैं अपनी टैक्सी में लेके जाता हूं, मैं भी वैसा लाइफ स्टाइल करना चाहता हूं, तो टैक्सी से मेरा वैसा लाइफ स्टाइल नहीं बन सकता, तो तुम्हारे पास कोई काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। अच्छा जी इसका ये कहना था, तो जॉन बकली जो है उसने कहा हां जी बिल्कुल हमारे पास काम है, तुम आओ हमारे फेडरल ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में। वहां पे जनाब ये जब इसने छोड़ा था ना FBI, तो वो ज्वाइन कर लिया था फेडरल ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और उस वक्त इनका डायरेक्टर जनरल आपको पता है कौन था? डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जो कि बाद में फिर आपको पता ही है कि वो बन गए थे, हाँ जी डिफेंस सेक्रेटरी बन गए थे जॉर्ज बुश साहब के जमाने में। तो जनाब ये उसके ऑफिस में ये आ गया और इन्होंने दोनों ने मिलकर फिर जॉर्ज बुश साहब ने, और इन्होंने आपको पता ही अफगानिस्तान इराक सारी बड़ी पॉलिसियां बनाई वगैरह, महाराज जी उसके ऑफिस में जी उसने बकली साहब ने इसको बुला लिया वेट साहब को, उसने कहा जी आओ तुम्हारे पास हमारे पास काम है। अच्छा जी वो काम क्या था? वो कहते हैं जी एक सेनेटर था मस्की, वो अपनी कैंपेन चला रहा था उस वक्त और उससे निक्सन को बड़ा खतरा आ रहा था कि ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए और ये जो है चीजें इसकी जो है मेरे से कैंपेन अच्छी ना हो जाए, तो मुझे अंदर की खबर होनी चाहिए। अच्छा इसने जो है जॉन बकली ने इसको वेट को कहा कि तुमने ये क्या करना है, तुम तो एक टैक्सी ड्राइवर हो है, तो तुमने जाके उनको कहना है वो जो मस्की है उसकी कैंपेन को कि मैं मस्की से बड़ा इंप्रेस्ड हूं और क्या मैं अपने फारग वक्त में तुम्हारे लिए वॉलंटियर वर्क कर सकता हूं, लेकिन असल में तुम्हारा काम वहां की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ला के मुझे देनी है तुमने। तो इसने कहा ठीक है, कितने पैसे हैं? उसने कहा पैसे लंबे हैं, बहुत लंबे पैसे हैं, बस तुमने ये इंफॉर्मेशन मुझे ला लो, परवाह ना करो, तुम ये काम करो, तुम मस्की के ऑफिस से कैंपेन ऑफिस से मुझे सारी इंफॉर्मेशन ला के दो। बस जी फिर वही हुआ जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, ये चलाता था टैक्सी, इसने गाड़ी में खड़ी की, फिर वहां पे गया मस्की की, इसने बड़ी तारीफ की, वो कहने लगा जी मैं वॉलंटियर करूंगा, उन्होंने कहा तुम कौन हो? जी मैं टैक्सी ड्राइवर हूं। अच्छा ठीक है तो फिर तुम हमारे लिए एज अ कोरियर काम करो, उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी टैक्सी है। वो अपने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इसको देते थे इस ऑफिस से कैंपेन ऑफिस तक ले जाने के लिए। वो जो सारे पेपर्स था जी ये क्या करता था, ये कर लेता था सारे शेयर इसके साथ जॉन बकली के साथ, और ये लोग मिलते थे जी कभी किसी स्ट्रीट के कॉर्नर में, कभी कहीं, कभी वो आके गाड़ी में बैठ जाता था और ये उसको दिखाता था, और ये सारे जो हैं ये सारी ऐसे चीजें चलती रहीं और इसको मिलना शुरू हो गया उस जमाने में। आप सोचें कि 70s में $150 to $175 पर वीक इसको मिलना शुरू हो गया, इसकी हालत अच्छी हो गई, इसके पास बड़े, तो फैमिली जो थी ना वो बड़ी वो हो गई, सस्पिशियस हो गई कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है उसकी ये हालत जो है इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो गई है। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 1972 में जो मस्की की कैंपेन थी सेनेटर मस्की की, वो सही चली नहीं, वो मर गई और उसने अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके पास पहुंची। अच्छा, इसमें जब ये वाटरगेट स्कैंडल आया सामने और लोगों ने कहा जी ये निक्सन साहब के पास अंदर की खरबे कैसे हैं, और जब ये प्रोब शुरू हुआ जो FBI और CISRO ने फिर करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि ओ हो ये तो सारी इंफॉर्मेशन,
टैक्सी ड्राइवर की बात है,
ये मोल्स रखे हुए हैं बहुत सारे, जो बहुत सारी कैंपेन से ये ला के दे रहे हैं, और ये फोन भी टैप हो रहे हैं, और इस तरह से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इस तरह से। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये आदमी जो है इसको जाहिर है जब ये काम शाम खत्म हो गया तो उन्होंने कहा जी उठ जाओ, उठे थोड़ी कोई जरूरत ही नहीं रही सानू। अब जब उन्होंने कहा कि इसको तो बड़े पैसे कमाने की आदत पड़ गई थी, अच्छा अब जब उन्होंने कहा कि जाओ, तो इसने फिर लॉटरी खेलनी शुरू कर दी। इसकी जो कैब थी ना उसका नंबर था 108, तो 108 के ऊपर ना ये अपनी लॉटरी भर के ना तो ये लॉटरी खेलता था। लेकिन उसी कैब के अंदर 108 जो कैब थी उसके अंदर 1981 में बड़ी ही बुरी हालत में इसकी डेथ हुई। किसी को पता ही नहीं चला कि इसका क्या है, उसमें मरा पड़ा हुआ ये पाया गया। और इसकी जो बेटी है, अच्छा बेटे की डेथ हो गई बड़े बुरे तरीके से, और बेटी जो है वेरोना स्कॉट वो भी बहुत बुरी हालत में मरी। लेकिन अपने बाप का वो जो बॉक्स था ना जिसमें कि वो सारे राज वो रखता था, वो उसके पास ऐसे करके रह गया। तो जब वो मरी, तो जब वो उन्होंने बॉक्स लिया तो अथॉरिटीज को बताया, तो वो जब अथॉरिटीज के पास पहुंचा तो एक और कनेक्शन जुड़ गया वाटरगेट स्कैंडल के अंदर। एंड देन दे स्टार्टेड ट्रेसिंग कि भाई ये कौन था क्या था, तो वो तो उसके ऊपर जी ये जबरदस्त किस्म की उन्होंने स्टोरी लिखी है, और अमेजिंग स्टोरी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो कहते हैं जी कि उसके अंदर इसका ना ये जो था जॉन बकली, जाहिर अब उसका नाम जाहिर नहीं कर सकते थे, तो कहते हैं उसको ना ये आपस में दोनों कहते थे फैट जैक, तो वो फैट जैक जो था उसकी तरफ से भी एक लेटर था जिसमें लिखा था टू एल्मर वेट फ्रेंड समटाइम्स टैक्सी ड्राइवर अदर टाइम्स स्पाई मोस्ट इफेक्टिव लीगल लेजिटिमेट स्पाई इन होल वाटरगेट मेस। तो वो सारी चीजें जो हैं वो सामने आई और फिर उनको पता चला शुरू होता है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी लॉन्ग स्टोरी, और भी बहुत सारी डिटेल्स है, बट मैंने जरा की पॉइंट्स उसमें से पकड़े हैं। दिस इज समथिंग अबाउट 4,000 to 5,000 वर्ड स्टोरी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है।
एक ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक लेते हैं, हाँ
ब्रेक
जी, हाँ
लेते
जी,
हैं,
हाँ
ब्रेक लेके फौरन प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4162017778 हमारा फोन नंबर है।
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट, और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट हैमिल्टन में, 905-521-0540, 905-521-0540।
एशियन फूड सेंटर, इंडियन, कैनेडियन, साफ सुथरी ग्रोसरी देनाल।
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है।
अपने एरिया विच पेंदे किसी भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे।
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इक्को इक नंबर याद रखो, 416-740-3262।
एशियन फूड सेंटर, 416-740-3262। एशियन फूड सेंटर।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे, और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। 6477-741-9000।
अरे भाई, हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जैसे रेड लाइट सिग्नल, बैंक की लाइन, और हर रोज वो कॉफी की लाइन। मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी, यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ। पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज, हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444 एबल एक्सप्रेस।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड साहब, खबर हार एक प्रोग्राम है पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। खबर हार के जनाब रोए रवां आफ्ताब इकबाल साहब एक पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी टीम के जितने 16 लोग हैं, पूरी की पूरी टीम इनकी टोरंटो पहुंच रही है। June 26 को यहाँ होंगे टोरंटो में, कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर जो ब्रैम्पटन में वाक़ है वहाँ पर डिनर के साथ एक रंगारंग प्रोग्राम तश्कील दिया है जनाब नासिर शाह साहब ने। तो यहाँ पर गाने बजाने भी होंगे, स्टेज प्ले भी होगा और जो जैसे खबर हार में तनकीदी मजाया प्रोग्राम होता है वो सब कराएंगे आपके लिए आफ्ताब इकबाल एंड पूरी टीम। टिकट्स के लिए आप कॉल कर लें 416-526-6800, इनका फोन नंबर है। ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे पार्टी रूम है, यहाँ पर डेली डिनर बफे होता है, केटरिंग सर्विस है, आपको ये मिलेगा 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा, ये डिक्सी एंड बर्नम थॉप का मेजर इंटरसेक्शन बनता है। और यहाँ पर आप डिलिशियस पाकिस्तान के खाने साहब इंजॉय कर सकते हैं आप। और अगर आपको इसके लिए कोई सेकंड चाहिए होना कि भाई कैसे खाने इनके, तो आप शाजिया जी को फोन कर लें, शील टेल यू। आप जाना है विलेज टेस्ट पर, विलेज टेस्ट का फोन नंबर मैं दे देता हूं आपको 9052323663, इनका फोन नंबर है। जी
हाँ जी, तो ये थी जनाब बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। अच्छा जनाब, आज साउथ अफ्रीका में भी किसी को तकलीफ हो गई है पाकिस्तान से, और देखो ना सत्रवें मले बैठे हैं तो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है लोगों को,
ये क्या हो गया?
व्हाट इज दिस, ये हमें इतनी क्यों मिर्ची लगा रहे हैं, छोटा सा बेचारे मुल्क है हमें, तो हमारे वजह से तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अच्छा जी, अब ये फिकीली मबूलू एक इनके जो है वो साउथ अफ्रीका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आज ये एक इवेंट के ऊपर थे तो वहां पे एक जो हो रही थी साउथ अफ्रीका यूथ इकोनॉमिक काउंसिल का इवेंट चल रहा था, उस पर इनसे जी मबूलू साहब से पूछ लिया गया। उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में बेताशा जो है ये हो गई है, 35% पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है टच कर रही है 35%। उन्होंने कहा जी क्यों है? अच्छा जी, इन्होंने जी नाम ले लिया, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों की वजह से और बाकी के जो इलीगल फॉरनर्स यहां पर आ रहे हैं उसकी वजह से यह अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये आके ये कब्जा करके बैठ जाते हैं जॉब्स पे और कम पैसों पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, हालांकि पाकिस्तानी तो कम पैसे भी नहीं करता, हाँ बाकी कर सकते हैं, तो वो जी करते हैं और वो जी इसलिए जो है हमारे यूथ के पास वो नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर अपने ही मुल्क में बहुत बड़ा रिएक्शन इनके खिलाफ आ गया। शैरन एक्बरम, हेड ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट राइट्स प्रोग्राम एट लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स, एक बहुत बड़ी फर्म है साउथ अफ्रीका की, उस पर ये काम करती हैं, उन्होंने कहा कि ये इनके जो कॉमेंट्स हैं इंतहाई रेकलेस है एंड दे आर द रिजल्ट ऑफ पोलिटिकल इंप्यूनिटी जो कि ये रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं इन ये एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं सकता इस वजह से ये जो हैं, और ये जो मिनिस्टर हैं ये नोन है कि ये इस तरह के रेकलेस स्टेटमेंट्स जो हैं वो करते हैं। और वो कहते हैं जी हमने बहुत अरसा पहले कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि ये इस तरह के रेसिस्ट और गलत किस्म के लोगों को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों नहीं है, उन रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं किया गया, तो इसलिए जो है ये हर बंदा मुंह उठा के हर किसी के खिलाफ जो है इस मुल्क में बात कर लेता है।
हाँ।
तो जनाब ये उधर हुई बड़ा है मेरी मेरी। रॉयटर्स की आज ही, रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर, रॉयटर्स की रिपोर्ट इस स्कीम के बारे में नहीं है, स्कीम के बाद हुआ क्या उसके बारे में। अच्छा, एक स्कीम आई है न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट सिस्टम जिसको के कह रहे हैं अग्निपथ इंडिया में, यानी पाथ ऑफ फायर, वो मूवी नहीं जो आप अग्निपथ समझें, ये नई स्कीम आई है मिलिट्री रिक्रूटमेंट की। इसमें वो क्या कह रहा है इंडिया, इंडिया इसमें कह रहा है कि जी जो 17.5 और 21 साल के बीच के जो लोग हैं उनको मिलिट्री के लिए जो है वो किया जाएगा 4 साल के लिए एम्प्लॉय, और इसमें से सिर्फ 1/4 जो है उनको लॉन्गर पीरियड्स के लिए रिटेन किया जाएगा। एंड दिस इज द मिलिट्री, नॉट सम ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए। अच्छा, अब रॉयटर्स की इसके ऊपर रिपोर्ट आई है जो कि ये जो अग्निपथ न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट सिस्टम है, इसके खिलाफ सारे हिंदुस्तान के अंदर जो है फिर से प्रोटेस्ट आ गए हैं। लोगों ने टायर जलाए, रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनको खराब किया। यहां पे बहुत सारी जो जगहों के ऊपर ये भी पता चला कि जी ये जो है ट्रेनें जो हैं ट्रेनों की कुछ बोगियां जलाई गईं, और बहुत सारी जगहों के ऊपर बिहार में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये प्रोटेस्ट हुए। पुलिस कहती है जी इन्होंने वेंडलाइज किए हैं स्टेशन, ट्रेन ट्रैक्स खराब किए हैं, रेलवे की बिल्डिंग्स खराब की हैं, प्राइवेट गाड़ियों को जलाया है, बसों को जलाया है। तो ये मार घेराओ जलाओ ये उधर फिर से शुरू हो गया। इसके अलावा और बड़े जो प्रोटेस्ट हैं वो हरियाणा और राजस्थान में भी हुए हैं। 22 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो गई थी, 5 को पूरा अपना सफर नहीं करने दिया गया। तो इसके ऊपर जो है रॉयटर्स ने कहा कि भाई ये स्कीम आने के बाद ये सारी जगह पे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं, और उसकी ये कवरेज इन्होंने आज की है। तो इसमें पुलिस जो है वो कह रही है कि हम इनको सिर्फ रोक रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये रोक नहीं रहे, ये हमारे ऊपर डंडे भी बरसा रहे हैं। भाई अगर आप चीजें तोड़ेंगे खराब करेंगे तो पुलिस आपको डंडे तो आपको पड़ेंगे ना फिर। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि ये पहले जो रिक्रूटमेंट्स होती थी ये खुद से मिलिट्री करती थी, खुद से एयरफोर्स करती थी, खुद से नेवी करती थी, अब आप ये कैसे करोगे? और आधे से ज्यादा लोगों को आप 4 साल के बाद बोलोगे जी हूं बस ले ली ट्रेनिंग होनी तो उसी अगे कंटिन्यू करना कार जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं जी इंडिया की 1.38 मिलियन जो स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेस हैं तो इसके अंदर तो फिर लोग कम होते चले जाएंगे। अच्छा, अब जब ये हुआ तो AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि मोदी जी को शायद ये लग रहा है उनकी गवर्नमेंट को कि इस तरह से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म की जा सकती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से खत्म नहीं की जा सकती, इनको समझनी ये चाहिए कि इस मुल्क में 66% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, और आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है, और आपको यह भी समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के जो मामलात पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं वो अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप सोल्जर्स जो हैं वो कोई हमारा सिस्टम नहीं है या स्कीम नहीं है, सोल्जर सोल्जर है वो स्कीम नहीं का हिस्सा नहीं हो सकता, तो आप जो है इंडिया के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए एटलीस्ट मिलिट्री के साथ ये गेम ना खेलें। तो आज इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो किया। कराची के अंदर पाकिस्तान में जी NA-240 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बाय इलेक्शन चल रहे थे, यहां पे बेइंतहा वायलेंट क्लैशेस हुए, और इन क्लैशेस के अंदर एक बंदे की डेथ हो गई, बाकी जो 3 लोग थे बहुत गंभीर तरीके से उनको जो गोलियां मारी गई तो उससे ये जख्मी हो गए। यहां पे सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इजाज अनवर चौहान, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को कहा कि सिचुएशन को कंट्रोल करें। ये जो नई फुटेज वगैरह सामने आई है इसमें देखा जा सकता था कि जी एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। PSP के जो चीफ हैं मुस्तफा कमाल, उन्होंने कहा हमारी पार्टी का एक बंदा मरा है और हमारे जो है लोग जख्मी हुए हैं, और उन्होंने इल्जाम जो है TLP के ऊपर दिया है। उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ TLP ने किया, ये जो बेचारे की डेथ हुई है लड़के की ये बल्दिया के इलाके में रहता था और ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये TLP वाले झूठ बोल रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक किया गया, उल्टा उन्होंने हमारे पे अटैक किया था। लेकिन TLP के जो लीडर हैं मुफ्ती गौस बगदादी, उन्होंने कहा जी कि उनके बहुत सारे जो बंदे हैं इन क्लैशेस के अंदर वो इंजर हुए हैं, और उन्होंने इनके लिए बड़ा बुरा वर्ड यूज किया, लूजर्स का वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा ये जो लूजर्स हैं ये वायलेंस इन्होंने शुरू कर दी जब इनको पता चला कि अब ये यहां के इलेक्शन जो हैं लूज इस जगह से कर जाएंगे। फ्यूल की प्राइसेस, आपको पता ही है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल साहब वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि जी प्राइसेस मेरी वजह से ऊपर नहीं गई, इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से गई है, जो उसने गलत डील्स की हैं IMF के साथ उसकी वजह से ऊपर जा रही हैं, हमको बेल आउट करने के लिए IMF की जो है शर्तें माननी पड़ेंगी क्योंकि ये डील्स इमरान खान साहब ने की थी, तो उसको ऊपर बड़ा बैकलैश आ रहा था। तो आज प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो कुछ इन्होंने चॉइसेस बनाई हैं गवर्नमेंट ने उनके ऊपर उन्होंने आज बड़ा डिफेंड किया। उन्होंने कहा जी मुफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अगर जो है प्राइसेस ऊपर ना की गई तो मुल्क जो है दिवालिया होने की तरफ जाएगा। आपको पता ही है कल सारी डिटेल बताई थी उसने फयाज भाई ने कि पहले जो है 30 रुपीज, फिर 30 रुपीज, फिर 24 रुपीज, तो वो यही कह रहे हैं कि जी 30 rupees جو ہے وہ زرداری صاحب کا حصہ تھا, 30 rupees شہباز شریف صاب کا حصہ تھا, اور یہ جو باقی کے 24 rupees ہیں مولانا جو ہے فضل الرحمان صاحب ان کی وجہ سے, تو قیمتیں بے تحاشا اوپر چلی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہم کو یہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم کو آئی ایم ایف کی کریٹیکل سپورٹ چاہیے, کیونکہ ملک جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بالکل جو ہے وہ کر دیا ہے برباد. اور مفتی اسماعیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ تمہیں دانے دیتے رہے ہیں, بس تمہاری جو ہے وہ ویڈ شیٹ کی پرائز کم کرتے رہے ہیں, زیادہ کرتے رہے ہیں, اور سوری کم کرتے رہے ہیں تاکہ پیٹرول جو ہے وہ اس کو بیلنس رکھا جا سکے. تو اس لیے تم لوگ کہتے ہو کہ جی ہم نے یہ چیزیں خراب کی ہیں, ہم نے یہ چیزیں خراب نہیں کی, یہ وہ کر کے گئے ہیں. تو آج جی پرائم منسٹر صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کے علاوہ کہا جی کہ سکھر حیدرآباد کا جو موٹر وے پروجیکٹ ہے اس کو فوراً سے پہلے شروع کیا جائے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اس میں کام جو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا جی کہ یہ کراکرم ہائی وے تھاہا کوٹ ہائی کوٹ رائے کوٹ سیکشن بابو سر ٹنل خزدار کچلک روڈ ان سب کے اوپر فوراً کام شروع کیا جائے, اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر کام آپ جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ پروکیورمنٹ پروسیس جو ہے کتنی جلدی سے کام کرے گا اور بالکل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا جی اس سارے کام کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت گندا کام کیا تھا, 4 سال میں روک دیے تھے یہ سارے پروجیکٹ, تو اب ہم یہ سارے پروجیکٹ پھر سے چلانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے جی آج پھر سے میسج کو کہا ہے, اپنے جو ہیں ہم وطنوں کو پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جی اب ہم اس سنڈے کو پھر سے ایک مورچہ نکالیں گے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے اگینسٹ. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے پیسفل رہنا ہے اور آپ نے صحیح طریقے سے آنا ہے. May 26 کو جو انہوں نے لانگ مارچ نکالا تھا وہ اسلام آباد میں اچانک سے انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے فیئر ہے کہ یہاں پہ بلڈ شیڈ نہ ہو جائے, تو یہ سارے لوگ جا رہے تھے ڈی چوک کی طرف, لیکن کیونکہ اس میں 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, ایک پولیس والا تھا اور 2 PTI کے ورکر تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہم اپنا جو ہے لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سنڈے کو پھر سے آپ لوگ آئیں 9 بجے کے قریب اور 10 بجے کے قریب, ویڈیو لنک کے تھرو میں آپ سے بات کروں گا. اس کے اوپر جو ہیں مریم نواز پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ وہ بہت بھڑک گئی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کہ یہ عمران خان صاحب کا جو فتنہ اور فساد ہے وہ سٹیٹ بالکل نہیں کرنے دے گی. آج یہ جرنلسٹوں سے بات کر رہی تھی اسلام آباد میں, انہوں نے کہا اس ملک کا بیڑا گرک جو ہے اور وہ جو روئن کے دھانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے. اور جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے, انہوں نے لینڈ مائنز بچھائی تھیں جس کی وجہ سے اکانومی خراب ہو گئی ہے, اور یہ لون سارے آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں, ہم نے نہیں لیے اس کے ڈیلز بنائے آئی ایم ایف سے, اس کے ڈیلز جو تھے عمران خان کی گورنمنٹ نے بنائے تھے, اور اگر ہم نے یہ ان کی باتیں نہ مانی آئی ایم ایف کی تو پھر جو ہے ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں بجی آپ کے پاس کون سی گورنمنٹ کی جو ہے وہ پوسٹ ہے جس کے اوپر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سٹیٹ آپ کو یہ نہیں کرنے دے گی. دیکھیں نا یہ بیان دینا کہ سٹیٹ آپ کو فتنہ اور فساد نہیں کرنے دے گی, وہ تو سٹیٹ کا کوئی منسٹر ہی بات کر سکتا ہے نا. آپ کیسے کر رہے ہو, آپ کے پاس
What is she? What is she?
That's what I'm asking you. کہ ان کے پاس کیا پورٹ فولیو ہے سوائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں یہ.
نہیں نہیں وہ بھی تو ہوتا ہے منسٹر آف نو پورٹ فولیو.
اچھا 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 یہ وہ ہے, پھر تو پرائم منسٹر یہی ہوئی پھر, شہباز شریف بیچارے سب تو ایسے ہی بٹھائے ہوئے.
ایک منسٹر ایسا بھی ہوتا ہے نا, منسٹر آف نو پورٹ فولیو.
اچھا اچھا اچھا, جیسے ہمارے وہ اخباروں میں ہوتا ہے منسٹر وہ ایڈیٹر ایٹ لارج, اس کو لوگ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہوتا ہے, پتہ کبھی کبھی آتا ہوتا ہے بس, وہ کبھی کبھی آ کے ایک ایڈیٹوریل پیس لکھ دیتا ہے کھڑکا کے بس, ایڈیٹر ایٹ لارج. ٹھیک ہے اچھا اچھا جناب, پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں بی بی زرداری صاحب, اور مجھے پتا نہیں تھا ماجد بھائی 33 ایئرس کے ہو گئے, میں تو سمجھتی تھی 28-29 سال کے ہیں. بہرحال جی بی بی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جناب آج وہ بات کر رہے تھے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اسلام آباد میں, اور فاؤنڈنگ ڈے سیرمنی وہ لوگ منا رہے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کو ہندوستان کے ساتھ پھر سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ, اور August 19 یعنی کہ وہی جب August 5, 2019 جب انہوں نے ریووک کیا تھا جموں اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس, مجھے پتا ہے وہ بھی ہے, لیکن کیا یہ اچھی بات ہے میں ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان انڈیا سے بات نہیں کرتا, انڈیا کے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتا, از دس دا بیسٹ وے ٹو کمیونیکیٹ, کیا پاکستان اپنے گولز اچیو کر سکتا ہے, تو پائن پھر پچھلے 70 سال کہڑے گول تھی اچیو کر لین انڈیا دے نال کے ہن کر لین. بہرحال جی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کو ہندوستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کیوں ناراض کر رہے ہیں ان کو, ہیں جی. تو یہ انہوں نے کہا. اچھا جی کیون سپیسی صاحب جو ہیں وہ آج لینڈ این پہنچے ہوئے تھے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا ان سے لوگ پیار کرتے ہیں, تو گھرے ہوئے تھے لوگوں کے میں یہاں پہ बहुत से फोटोग्राफर्स और टीवी क्रू आए हुए थे, ये अपनी लीगल टीम और दो पुलिस वालों के साथ थे, और ये आए हैं वो जो सेक्सुअल असॉल्ट के तीन मर्दों ने इनके ऊपर केसेस लगाए हैं, उसके ऊपर इनको 5 charges के ऊपर लगाए गए थे इनके ऊपर। तो ये इधर आए तो इनके लॉयर जो हैं पैट्रिक गिब्स, उन्होंने कहा जी कि ये लॉ को मानने वाला सिटीजन है और ये इसलिए आया है कि ये तमाम की तमाम एलिगेशन ऑफ क्रिमिनलिटी जो है इसको डिनाई करता है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ही हैज कम टू एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस, और इसीलिए ये यहां पर आए हैं, वरना ये बड़े बिजी थे। तो बहरहाल जी ये इनके लायर ने कहा है, तो अब ये लायर तो आपको पता ही है,
अब बिजी किस चीज में होगा, इनको तो कहीं भी कोई पार्ट नहीं है, इनका
पार्ट बिजी है ना?
निकाल दिया ना
क्यों, यानी माजिद भाई कभी मैं आपको कह दूं कि आप सैटरडे संडे को इधर आओ तो आप मुझे कहेंगे ना नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूं, तो वो तो फिर बॉलीवुड का स्टार है, वो बहुत बिजी है,
था आप नहीं
आपको क्या पता है ऐसे। अच्छा जनाब, आज जैकी श्रॉफ जो है उन्होंने अपनी एक पिक्चर शेयर की है और उस पर उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम चार यार मिलके आ रहे हैं, लेकिन अरे छोटू कहाँ है। अच्छा जी, छोटू इसलिए क्योंकि ये जो पिक्चर इन्होंने शेयर की है इसके अंदर जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सनी देओल नहीं नजर आ रहे। और मूवी बनाने वालों के मुताबिक ये जो फिल्म जिसका नाम होगा बाप, इसके अंदर ये चार लोग होंगे, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और सनी देओल। तो उसके बारे में ये कह रहे थे अरे छुटवा किधर है बिंदू, तो ये है। अच्छा जी, जो मेकर्स हैं उन्होंने तो अभी तक इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन पिंक वाला जो एक ऑनलाइन जो एंटरटेनमेंट का वेबसाइट है वो, उसने कहा है कि ये इस प्रोजेक्ट को अहमद खान कर रहे हैं और ये इस प्रोजेक्ट को वो बना रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद जी स्टूडियोज। तो अब लोग तो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं, है ना, वो कह रहे हैं ये चार बड़े जो है महानीयति हैं, ये आ रहे हैं, महारथी आ रहे हैं, तो क्या चक्कर होगा।
वैसे व्हाटएवर द मूवी इज
बाप, तो बाप तो ये सारे हैं,
चलेगी
बाप है,
चलेगी मूवी,
चलेगी नहीं दौड़ेगी,
हाँ जी
हाँ दौड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, मिथुन चक्रवर्ती योर ओन दादा टर्न 71 टुडे, है जी 71 ईयर्स के हो गए हैं और ओवर 350 मूवीज में इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इन्होंने काम किया। और आपको पता ही है कि जिस वक्त ये आए थे तो इन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी थी, और आज जो अक्षय कुमार कहता है जी मेरी चार चार फिल्में आती हैं और चारों बड़ी जो कामयाब हो जाती हैं, नो अदर एक्टर डज 4 films टुडे इन बॉलीवुड एक्सेप्ट फॉर अक्षय कुमार। आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती की एक एक साल में 10 से 12 फिल्में आती थी और वो सारी की सारी हिट होती थी और वो सारे सिनेमाज में वर्क चलती रहती थी। तो वो जी, तो ये आज जी 71, लेकिन इन्होंने एक 2011 में ETC को एक इंटरव्यू दिया था जो कि अब सामने आया है, और ये जो था इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, एक आर्ट हाउस ड्रामा था मृग गया इन 1976, और उसके बाद फिर इनको एक मूवी मिली थी जो कि बेस्ट मूवी थी। और आपको पता है कि उस वक्त की ये जो फिल्म थी उसने 100 crores उस वक्त जो हैं वो कमाए थे, तो इट वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू क्रॉस 100 crores। तो इनका ये जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें उन्होंने इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप अपने अर्ली डेज के बारे में बताएं, तो इसने कहा कि मेरे अर्ली डेज बहुत खराब थे, मैं तो बल्कि सुइसाइड करने वाला था, मुझे लगता था कि मेरा कुछ नहीं यहां पर बनेगा। जब मैं मुंबई आया तो मैं तो कभी किसी हॉस्टल के सामने सो जाता था, कभी किसी दरख्त के नीचे सो जाता था, तो मैं इतना बैड स्मेल करता था कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू जाएगा कैसे जो है वो फिल्म स्टूडियो में अपने काम मांगने के लिए तेरा। तो कहते हैं उसने मुझे एक वहां पे था मट्टुंगे जिम खाना, उसकी मेंबरशिप इसने मुझे लेकर दे दी थी और उसके भी पैसे उसी ने दिए थे, और उधर जाके मैं नहा धो लेता था एटलीस्ट, और फिर जाके मैं इंटरव्यू देता था और कहता था भाई मुझे फिल्म दो और ये करके। तो इस तरह से, तो कहता है मैं ये बात वगैरह करना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरी शायद ये स्टोरी सुन के बहुत सारे लोग जो एस्पायरिंग एक्टर्स जो के आते हैं मुंबई में, कहीं ऐसा ना हो कि वो हार्ट ब्रोकन हो जाए, लेकिन बहरहाल आई हैड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और उसके बाद तो आपने पता ही, आपको चल सो चल जब हुई तो 35 ईयर्स से ये अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, दादा इसको दादा बोलते हैं, तो ये बने हुए हैं। एंड जनाब आपको पता ही है यॉर्कशायर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे ये जो थे अजीम रफीक, पाकिस्तानी बॉर्न क्रिकेटर जो है इन्होंने, और इन्होंने कहा था जब मैं इनके साथ खेलता था, जब दो मैंने स्पेल्स इनके साथ सेप्टेम्बर 2020 में किए थे, तो ये मेरे साथ बहुत ही रेसिस्ट जो है तरीके से पेश आते थे, मुझे बुली करते थे। तो इसके ऊपर जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है उसने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी, तो अब उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गई और उसमें उन्होंने यॉर्कशायर काउंटी और बहुत सारे और लोगों को इसके लिए जो है सजाएं दी हैं, चार्ज किया है यानी कि। और जनाब AFP की आज एक रिपोर्ट है और ये देखें सोशल मीडिया कितना खतरे में नाक है माजिद भाई। सोशल मीडिया के ऊपर एक जी तस्वीर है मुइन खान की, आपको पता ही है कि ब्रिटिश प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, उनकी एक तस्वीर आ रही है और उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो कुछ ब्लास्फेमी इंडिया में हुई है उसकी वजह से मैं इंडिया में आइंदा कभी भी कोई मैच नहीं खेलूंगा, मैं बॉयकॉट कर रहा हूं IPL का और मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को कहता हूं कि आप भी ये करो, आई लव मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रॉफिट मोहम्मद राइट। तो उसके लिए तो ये जनाब पता चला कि ये एक अकाउंट है, एक फेक अकाउंट है जो मुइन मुनीर अली ने कोई बनाया हुआ है जिसको कि अब शट कर दिया गया है और वो ये जो है मुइन अली के बारे में झूठी खबरें फैला रहा था। तो दिस वॉज अ लाई, ही नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट, क्योंकि इसका जो फैसला है वो आना था 5 बजे के बाद, ये जो है FIFA 2026।
गुड न्यूज, गुड न्यूज।
ये किसको जो है मिलेंगी, इसमें कनाडा जो है हमारा उसके 3 सिटीज थे, एक वैनकूवर, टोरंटो और एक एडमंटन। तो उसमें से 2 जो कनाडा के सिटीज हैं, एक टोरंटो और एक जो है वैनकूवर, उसको जो है सिलेक्ट किया गया है टू होस्ट अलॉन्ग विद मेक्सिको एंड USA, लेकिन कनेडा के ये 2 जो सिटीज हैं टोरंटो एंड वैनकूवर उनको भी जो है सिलेक्ट किया गया है FIFA 2026 के लिए। लेकिन माजिद भाई आप देखो कि ये 3 इतने वडे मुल्क जो हैं मिलके कर रहे हैं और वो जो कतर है छोटा सा मुल्क है और वो कल्ला कर रहा है और आप देखें कि 8 उसने इतने बड़े बड़े फुटबॉल,
दैट इज अमेजिंग। मैं जब कल आपने ये न्यूज सुनाई मुझे तो मैं ये सोच रहा था,
कल्ला कर रहा है वो,
मैं ये सोच रहा था कि
यहाँ पर
जब ओलंपिक्स होते हैं तो ये लोग एक ओलंपिक स्टेडियम बनाते हैं
बस,
तो एक ओलंपिक स्टेडियम बनाने के बाद वो सारा दुनिया से उनको प्रेशर पड़ता है पूरे मुल्क से कि भाई आप
इतना पैसा खर्च किया,
जब खत्म हो जाएगा ओलंपिक्स तो फिर आप इसका क्या
करोगे। यस,
तो उन्होंने 8 बना दिए,
8 बनाए हैं और क्योंकि वो कहते हैं जी लोग बोर हो जाएंगे हर जगह, क्योंकि 23-24 कोई 32 मैचेस है ना, तो वो कहते हैं रोज एक जगह तो वैसे भी नहीं आ सकते और वैसे भी एक वक्त में 3-4 टीम्स जो हैं कभी कभी खेल रही होती है ना, मतलब 3-4 वो मैचेस हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक हमने कहा 8 स्टेडियम बनाए माजिद भाई और ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट है। अच्छा कल हम ना उसकी तस्वीरें लेकर आएंगे, कल हम उनके जो स्टेडियम्स जो उन्होंने बनाया ना कतर में, ओ हो क्या स्टेडियम्स हैं, क्या स्टेडियम्स हैं, क्या उनका आर्किटेक्चर है और उसकी फैसिलिटीज क्या क्या कुछ है। वहां पे आप सो सकते हैं स्टेडियम के अंदर, नहा धो सकते हैं, खा पी सकते हैं, वहां पे आपने स्विमिंग करनी है रिलैक्स करने के लिए आप स्विमिंग कर सकते, मतलब ऐसा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ना ये अरब्स, अमेजिंग, जबरदस्त किस्म के। वो कल हम चलो तस्वीरें लाएंगे जी,
पैसा फेंक तमाशा देख,
अमेरिका देख और काटे पैसा माजिद भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या बात कह रही है।
नहीं अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं जितना उनके पास है,
जिंदा कतारियों के पास नहीं, स्टाइल भी तो होना चाहिए ना माजिद भाई, स्टाइल बड़ा है उनके पास।
अभी सिर्फ उनकी कतर की एयरलाइन जो है ना
कतार एयरवेज
वन ऑफ, अभी लेटेस्ट अभी उसकी न्यूज अभी ब्रेकआउट हुई है कि
टॉप एयरलाइन है,
$1.5 बिलियन उन्होंने एक क्वार्टर बनाया है।
या क्योंकि
जहां पर दुनिया पूरी की जो एयरलाइंस हैं वो घाटे में जा रही हैं,
घाटे में जा रही हैं, एंड बिकॉज इट इज टू ऑब्वियस, आप सफर करके देख लें, मैंने तो एतिहाद में भी, एमिरेट्स में भी, कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन, सिंगापुर खैर बहुत अच्छी है वो भी, अपनी कनेडा एयरलाइन,
नहीं मगर आई थिंक ये जो
सर्विस इज आउटस्टैंडिंग एब्सोल्यूटली, आपको पता है बिल्कुल जैसे 5-स्टार होटल में आपके पास वो आता है, कार्ड आता है या वो बैर आता है आपसे पूछने के लिए कि भाई आपको क्या खाना है, तो आपको वो मेन्यू दिया जाता है ना, तो वैसे आपके पास मेन्यू आता है और ये इन तीनों एयरलाइंस का है, ये इसमें
कौन कौन सी,
ये कतार एयरवेज एंड एमिरेट्स एंड एतिहाद,
मगर आई थिंक द बेस्ट इज एमिरेट्स,
नहीं
पर्सनल वो मेरा वो है, चॉइस हर एक की अपनी चॉइस होती है,
इज वैसे जो है ना मेरे ख्याल में 1 पॉइंट इज बेटर देन एमिरेट्स,
एमिरेट्स की अगर आप बिजनेस क्लास में सफर करें ना,
ओह यस,
तो आई थिंक दैट्स हेवन।
हाँ लेकिन मजद भाई अब तैयारे सारों ने एक जैसे ले लिए हैं ना, अब जैसे अब ये 3 ऐसी एयरलाइंस हैं जिनके पास अब पता है कैसे तैयारे हैं, तैयारे ये हैं डबल डेक हैं, एक तो ऊपर जाएं, ऊपर जाके बेड लंबा करके सो जाएं आप।
हाँ जी एमिरेट्स में यही है।
हाँ ये 3 जो एयरलाइंस हैं इनके पास ऐसे तैयारे हैं और मेरा नहीं ख्याल किसी और के पास ऐसे हैं, तो ऊपर जाएं आप बेड पे लेट जाएं सो जाएं।
हाँ जी एमरेस एमरेस की यही चीज मुझे पसंद आई थी कि भाई आप जाएं ऊपर बिजनेस क्लास में जाएं वहां जाके अपना बैठे और उसी सीट को जो है वो एकदम
बन जाता है
बेड बन जाता है पूरा वो और ये नहीं कि आपने उसको सिर्फ रिक्लाइन किया है नो इट एक्चुअली इज अ बेड और वहां पर भी वही है कि जो उनकी होस्टेसेस होती हैं वो आती हैं वहां पर और जो
होस्टेसेस क्या हसीन रखी हुई है और बैठ के देख के उन्होंने देख के हज थोड़ा पूरा हो जाता
तो वो जब आती है वो आके वही मेन्यू आपको देके जाती है कि भाई आप सर आप बताइए आप उसको इस पे क्या 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 खाना चाहिए कैसे कब चाहिए किस वक्त चाहिए आप हमें बता दें तो उस वक्त वैसे ही आके नहीं उठाएगी आप उठे जी उठे हेलो उठो खाने का वक्त हो गया नो दे डोंट डू दैट
नहीं बिल्कुल नहीं और आती हैं और अगर आपने वो टाइम दिया भी हुआ है तो वो आएंगी देखेंगी अगर आप सो रहे हैं फिर वापस ले जाएंगी फिर थोड़ी देर में आएंगी फिर देखेंगी
और हर वक्त
उसकी मंगते रहते हो यार कनेडा से पैर पानी दे दो वो भी आप डर डर के मांगते हो कहते हो यार पानी के भी $4 ना ले लें
यही है
पैसे मांगते हैं पानी के भी
हाँ ये अभी मैं वैंकूवर होके आया हूँ तो वो लेके आ गया तो मैंने कहा चलो यार कुछ पीने पिलाने को मिलेगा यहाँ पर अभी तो पता लगा नहीं वो पानी के $3 है कॉफी के $4 है अपने कहा जाके पिलाऊंगा छोटे छोटे पर है ना तो ये
हाँ ये इनका ऐसे है वो हर थोड़ी देर में आते हैं जूसेस देंगे स्वीट्स देंगे और चीजें देंगे
एयर कैनेडा पहले दिया करती थी
अच्छा
एयर कैनेडा जैसे आप हैं जो छोटी से छोटी यहाँ से न्यूयॉर्क भी अप्लाई करें नहीं यहाँ से आप न्यूयॉर्क भी फ्लाई करें तो आपको पीनट्स वगैरह हाँ अगर आप दूसरी पीनट मांग ले तो नहीं देते एक पीनट का नहीं आपका कितने आप अकेले हैं ना हाँ, आपको एक मिलेगी
एक ही मिलेगी
हाँ जी वो सही है मगर
नहीं ना इना एयरलाइन ने अन्नी पाई हुई है ना जी हाँ, जितनी हाँ, दफा आपने मांगना है उतनी दफा उन्होंने आपको देना है और ना तो करना ही नहीं है ना
ना नहीं करना तो इसीलिए अब ये देख लें कि मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है दुनिया की पूरी एयरलाइन जितनी है अमेरिका की जितनी भी एयरलाइंस है अमेरिकन एयरलाइंस वगैरह सारी दे आर ब्रिंक ऑफ
बैंक्रप्सी
या क्योंकि अगर ये पैंडेमिक और थोड़ा सा और लंबा चला जाता तो फिर तो इनका बेड़ा गर्क हो गया था मगर उसको देखें $1.5 billion उन्होंने प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया
अब इसकी मिर्चें लग जाएंगी इनको कहेंगे किसी तरह बर्बाद करो अब कतर को फिर से
दूसरी बात जो मैंने करनी थी आपसे कि आपने
नीले जी
थैंक यू सो मच ने नीले फिर वही बात
नीले गला आ गई नीले जी क्या कर रहे हैं
पूरा सेगमेंट खराब कर दिया आपने देखिए अब मेरे मुंह पे वो रौनक नहीं रही
नहीं बहुत रौनक है और लाइट मार रही है आपकी जगह कही अब
मैं जब कावानीम हाशमी साहब से बात कर रहा था कावानीम हाशमी साहब जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी है एंड ही शुड नो अबाउट इट कि वो एक कॉलर था उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो है वो रशिया का ऑयल इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि वहां पाइपलाइन नहीं है जी यार पाइपलाइन के बगैर ऑयल नहीं आ सकता ये तो किस किस एज में ठहरे हुए हैं तो मैंने उनसे कहा था देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज मगर पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं है तो मुझे एक कॉलर ने कॉल करके बताया टेक्स्ट किया कि भाई पाकिस्तान में दो रिफाइनरीज हैं एक नेशनल रिफाइनरी और एक और रिफाइनरी है
नेशनल रिफाइनरी है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है फिर बायको है फिर पार्को है फिर अरब जो है वो क्या नाम है पाक अरब है और नहीं पाक अरब कोई पार्को कहते हैं अटक ऑयल रिफाइनरी है तो पांच है वहां पे पांच
है, फिर आपने बताया कि उसके पांच रिफाइनरीज तो जब पांच रिफाइनरीज हैं तो आई मीन इट इज नॉट दैट पाकिस्तान डोंट हैव रिफाइनरीज
नहीं पाकिस्तान मजा भाई पता है मैं वही असल में अफसोस की बात है कि आई एम ट्राइंग टू कॉल सम पीपल जो कि बहुत क्लोजली पिछली गवर्नमेंट में काम कर रहे थे स्पेशली ये जो हमारा जो डिजिटल जो सारा ये इमरान खान साहब ने ये किया था ना कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ इसको लेके जाना है क्योंकि ये भी काम कर रहे थे मैंने जब मुशर्रफ साहब के जमाने में डॉक्टर अताउर रहमान साहब का इंटरव्यू लिया था ना तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे रह रहा है एंड इट्स अ बिलियंस ऑफ डॉलर नॉट बिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री तो ये बहुत सारी जो थी गवर्नमेंट्स वो चाहती थी कि उसके ऊपर काम करें और इसकी गवर्नमेंट ने आगे किया इसका खान साहब का जो ये सारा डिजिटल ये जो चला रहा था ना बंदा, उसको मैंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की है बिकॉज ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर. तो मैंने उनको बहुत दफा कहा कि आप आए. वो कहता जी नहीं, मेरा दिल टूट गया, मैं अब बात ही नहीं करना चाहता. मैंने कहा नहीं, आप बताओ, पाकिस्तान की लोग अच्छी बात सुनना चाहते हैं, पूछें. आप सोचें कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उन कंपनीज का, क्योंकि जाहिर है उनका कॉपी राइट है, आई एम नॉट रियली अलाउड टू. वो उनका मैंने बहुत बड़ी जो मल्टी नेशनल्स हैं जो कि दुनिया के दूसरे दूसरे हिस्सों में बैठी हुई हैं, उनका आपको पता है बैक ऑफिस जो है, ये सारी जो शो रील्स और ये चीजें जो है, वो पाकिस्तान है, कराची एंड लाहौर. कराची एंड लाहौर के अंदर जितने अब ये यंगस्टर्स जो हैं, मतलब जितने का मतलब है बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, वो अब गवर्नमेंट की जॉब नहीं करना चाहते. किसी जमाने में आपको होता था ना बड़ा, ओ जी मैं डीएमजी ग्रुप में जाऊंगा, मैं डीसी बनूंगा. नाउ नोबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ डीसी. वो कहते हैं जी उधर बनेंगे, गवर्नमेंट की झिकझिक आपको सुननी पड़ेगी, ईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे, बेईमानी आपको करनी पड़ेगी, दो नंबर का पैसा बनाना पड़ेगा, हेडेक्स उसके अलावा होंगे. व्हाई यू नो एंटर इनटू दिस झिकझिक. बच्चों ने पढ़ाइयां करके, ये नहीं कि सम जस्ट लल्लू मुंह उठा के बस आ गए, नो, लम्स जैसी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी इन कराची एंड ऑल दैट, उधर के जो रिसर्च डिपार्टमेंट, उधर के पढ़ के इन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस खोले हुए हैं, एंड दे आर सो ब्रिलियंट.
देखिए जो इंडिया में बैंगलोर टाइप चीज, ओके, बैंगलोर इज अ कैपिटल ऑफ ऑल दीज इंटरनेट वगैरह का ना, तो वहां पर इनके पास जो ये फॉरेन एक्सचेंज इतना आया है
जी, जी,
तो
जी,
उसकी वन ऑफ द मेन रीजन, ऑफकोर्स वहां लोग जाके बाहर जॉब करते हैं तो वहां से भी रेमिटेंस भेजते हैं अपने, मगर ये जो
सेक्टर है
इस सेक्टर में इन्होंने पूरी दुनिया से हेड ऑफिसेज वगैरह आप जाके देखें, इट्स ए ह्यूज यू नो शहर के शहर बनाए हुए उन्होंने. तो ये वहां से उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है.
हाँ जी हाँ जी, लेकिन बस वही बात है ना माजिद भाई, दैट एक्चुअली इज द थिंग. अगेन फिर मैं बात करूंगी, फिर यहाँ पे लोगों को हार्ट जो है वो बर्न आ जाएगा. पाकिस्तान के पास पहले ये कंपनीज आई थी बेंगलोर में जाने से पहले, और उन साहब को मैं लेके आऊंगी अपने चैनल पे, जो आपको पूरी इस चीज की हिस्ट्री बताएगा कि किस हमारे हुक्मरान ने टांग मारी और किक बैक्स मांगे और क्या कहा. मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे उतनी डिटेल्स पता भी नहीं है. तो वो दैट पर्सन आई वुड लाइक टू ब्रिंग, और मैं इंशाल्लाह कभी कोशिश करूंगी. वो पहले पाकिस्तान में आए थे, वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड थे
क्योंकि पूरी केपीके को उन्होंने बनाया हुआ है पूरा.
वो ये सेटअप, ये सारे ये चीजें जो है पाकिस्तान में करना चाहते थे. यहां पे उनसे इतनी बड़ी किक बैक्स मांगी गई, उन्होंने कहा जी भाई. और उस में मोदी जी जो थे, फॉर एग्जाम्पल, एक उसमें से एग्जाम्पल यह है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी पायान आपके आगे हाथ भी जोड़ेंगे, आपको सलाम भी करेंगे, आपको टैक्स हॉलीडे भी देंगे, जो फैसिलिटी आपको चाहिए आप आओ, आप हमारे गुजरात में करो. गुजरात में देख के फिर इन्होंने जी बाकी जगहों के ऊपर जो है उनको
हैदराबाद में
फिर बेंगलोर में उनको बुलाया. उन्होंने कहा जी फ्री जोन दे रहे हैं आपको, जो सेटअप करना है आप करो, सारी फैसिलिटीज हम देंगे, वन विंडो ऑपरेशन आपका करेंगे. और आपको पता है वहां पर उन्होंने
नो रेड टेप, सारी रेड टेप को
सब खत्म करके उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का एक बंदा आपके साथ होएगा जो आपके खुद पेपरों के ऊपर साइन करवा के एक बार, आपको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है कोई, तो ये करेंगे. तो बस बात वही है कि जो हमारे बच्चे तो बड़े लायक हैं और कौम जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. जैसे कि कल फियाज भाई भी कह रहे थे कि वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट नेशंस है पाकिस्तान, लेकिन जो ऊपर पॉलिटिकल गंद बैठा हुआ है वो इतना गंदा है कि वो इस नेशन को राइज नहीं करने देता.
डजंट मैटर हाउ यू लुक एट इट. अगेन मेरा और आपका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है,
किसी से नहीं है
ना,
किसी से
नहीं. हमारा ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से.
पाकिस्तान तो राइज करना चाहिए ना, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में माजिद भाई.
और वो उसका ये रीजन देखना चाहिए कि वाई पाकिस्तान इज नॉट टेकन लाइक अदर कंट्रीज. अभी बांग्लादेश की बात की आपने, उनका जीडीपी देख ले, हमारा जीडीपी
आगे निकल गए हमसे, कितने
हमसे आगे निकल गए.
1971 के बाद ही इनको आजादी,
वहां पर भी जितने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले बांग्लादेश को, वो जो है वो पाकिस्तान के पास आने थे.
और माजिद भाई लेकिन हुआ भी क्योंकि जिस वक्त बांग्लादेश में जैसे खासतौर पर पेंडेमिक आई ना, तो उस वक्त इनके पास इतनी ज्यादा लोग बहुत मर गए, लोग बहुत बीमार हो गए, आना लोगों ने छोड़ दिया क्राउडेड जगहों पर, तो काफी फॉल आउट आया था. तो ये जो बड़े इंटरनेशनल, आप आज भी किसी को पाकिस्तान में, फैसलाबाद में किसी को, या इन बड़े जो इलाके जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके अंदर, या जो कराची के बड़े बड़े सेठ जो हैं जिनकी फैक्ट्री हैं, उनको अगर आप गारमेंट से जो रिलेटेड हैं उनको अगर आप फोन करें, या सियालकोट के अंदर आप करें, आपको पता चलेगा लोगों के पास 20-25 तक सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, इतने ऑर्डर्स आए हुए हैं. बट माय फियर इज कि ये जो फिर से अब ये गवर्नमेंट आई है, ये फिर से इतना इन्होंने उनको तंग करना है या कुछ करेंगे, अलग करें ना करें, आई मीन यू नो आई डोंट वांट टू बैड माउथ, मुझे लगता है कि शायद ये भी सिंसियरली तरह से काम करेंगे, तो अगर इन्होंने सिंसियरिटी से काम किया तो ये ऑर्डर्स इनके पास ही, वरना ये सब वापस जाएंगे बांग्लादेश, दे विल ऑल गो बैक,
अल्लाह ना करे। एंड यही हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी की खबरें इंशाल्लाह ताला कल 5:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं आपके लिए चलूंगा भूली बिसरी यादें, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लियाकत मलिक साहब करते हैं और आज ट्रिब्यूट देंगे वो मुजीब आलम साहब को, मुजीब आलम को ट्रिब्यूट देंगे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अगर आपने पहले नहीं देखा या ना सुना तो एक दफा सुनिए या देखिए इसको, ई आवाज़ टीवी पे आप देख सकते हैं या हमारे रेडियो पे इसी तरह इसी डाल टोन पे रहें, आपको सुनाई देगा कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम और फिर भूली बिसरी यादें।
3 साल 9 ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
डाइवोर्स या कस्टडी की लड़ाई जिंदगी की सब तो औखी लड़ाई होंगी है, क्योंकि तुसी उस शख्स ना लड़ रहे होंगे हो जिसना थोड़ा घर परिवार ते थोड़े बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहेंगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
ओ माया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 to 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
मस्जिद इब्राहिम एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद कर रहा है जो जून 18 शाम 6 बजे टोरंटो मैरियट मार्कम में होने जा रहा है। इस फंड रेजिंग में दुनिया के मशहूर गेस्ट स्पीकर शेख आला अल सैयद शिरकत करेंगे। मस्जिद इब्राहिम की तामीर को पूरा करने के लिए $600,000 की जरूरत है। आप सबसे गुजारिश